ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हरिदास ठाकुर का जन्म जो है वो फुलिया ग्राम में हुआ था, और जो लीला है ना पहला वेश्या के साथ वाला, वो फुलिया ग्राम में हुआ था। इफ आई एम राइट, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट एनी वेज जिस बेनापोल में, शी इज राइट, बेनापोल में हुआ था वो, बंगाल में आता है, वेस्ट बंगाल, मतलब बांग्लादेश में आता है, सॉरी। तो चैतन्य महाप्रभु उनको रोज मिलते थे, और रोज मिलके उनको एक्चुअली शुरू करते हैं, फुलिया ग्राम में जन्म हुआ उनका। तो वो उस समय अद्वैत आचार्य थे और हरिदास ठाकुर थे, और कौन थे, बस मेनली यही थे एक्चुअली। तो जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो ऐसा कहते हैं कि शांतिपुर में हरिदास ठाकुर ने और अद्वैत आचार्य ने बहुत जोरदार कीर्तन किया, उनको ज़बरदस्त प्रेरणा हो गई इस समय। पता नहीं था जन्म हुआ करके, बाद में मालूम पड़ा, लेकिन ऐसे जैसे जन्म हुआ यहाँ पर तो एकदम उनको ज़बरदस्त प्रेरणा हुई वहाँ पर, तो उन्होंने वो तूफानी कीर्तन किया शांतिपुर में। फिर अपनी पत्नी को लेकर अद्वैत आचार्य, हाँ उनकी पत्नी का नाम क्या है, सीता देवी, हाँ ठाकुर रानी, उसको लेकर हरिदास ठाकुर नवद्वीप में आए, वहाँ पर भगवान का उन्होंने स्वागत किया। भगवान से वो बहुत, जैसे लौकिक दृष्टि से बहुत वो वरिष्ठ हैं उम्र से वगैरह, तो आज जो मैंने सुबह बताया वो महाप्रभु जी का और हरिदास ठाकुर का संवाद बताया, संवाद वो आप सुन लीजिए कथा में, दोबारा नहीं बताऊंगा। उसके बाद में वो वेश्या का काम हुआ। रामचंद्र खान जो है ना, वो समाज सेवक था बहुत बड़ा, लोगों को हेल्प करता था वगैरह, लेकिन वो अपने सेवा से और सेवा के ख्याति से बहुत आसक्त था, मतलब सेवा करने वाले को होता नहीं भाई बड़ा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत दानी आदमी है, बहुत दिलदार आदमी है, बहुत दयालु आदमी, ऐसे होते ना नाम होता ना, उससे वो बहुत आसक्त था। लेकिन जब हरिदास ठाकुर उस जगह पर आए ना, तो उनका नाम का ऊपर का प्रेम और नाम के ऊपर होने का होने वाला परिवर्तन, और जो भी उन लोगों को लाभ हुआ ना उससे, उससे लोग इतने प्रभावित हो गए कि उनकी कीर्ति रामचंद्र खान की कीर्ति से बढ़ गई। तो उसको लगा, अरे जब खाना नहीं होता है तो रामचंद्र खान, जब कपड़े नहीं होते तो रामचंद्र खान, पढ़ाई करनी होती तो रामचंद्र खान, और अभी हरिदास हरिदास कर रहे हैं, जब पेट में अन्न नहीं हुआ तो हरिदास खाना खिलाएगा, ऐसे करके उसको बहुत ईर्ष्या होती है उससे। और ईर्ष्या कैसी ना, ईर्ष्या एक बहुत बुरा रोग है एक्चुअली, ईर्ष्या बहुत बुरा रोग है। ईर्ष्या की वजह से हम लोग यहाँ पर आते हैं दुनिया में, क्योंकि हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से करते हैं, बाद में भगवान के भक्तों से करते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आते हैं। और किसी के प्रति यहाँ पर आने के बाद में ईर्ष्या होती है तो फिर वो रुकती नहीं है कभी भी, एक बार मैं आपसे द्वेष करने लगा ना तो उसको अंत नहीं है, वो ऐसी अग्नि है कि जो वो कभी कंट्रोल में रहती नहीं है, वो बढ़ने वाली अग्नि है। तो धीरे धीरे उसको ऐसा इतना असह्य हुआ, वो देखो ईर्ष्या को ना अगर हमने सही समय पर नष्ट नहीं कर दिया ना, भले बलपूर्वक, तो भयंकर रूप धारण कर लेती है, और वो जितना भयंकर रूप धारण कर लेती है उसमें वो उस व्यक्ति को ही ख़त्म कर देती है। जैसे कैंसर कैसे होता है, शुरू में कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर वो शरीर को ही ख़त्म करेगी जिस शरीर में वो घुसा हुआ है। तो ये आदमी इतना उसमें से प्रभावित हो गया, उसने तय किया कि अब मैं ना वेश्या को भेजूंगा उसके पास, उसका ख्याति नष्ट करने के लिए, मतलब इतना भयंकर काम है, समझो मैं आपसे द्वेष करता हूँ, ठीक है बुरा बोलूँगा उसके साथ आपके लिए, ठीक है, और थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं करूँगा आपसे, आपके उल्टा उत्तर दूंगा जो भी, ठीक है, बट कहूँगा, ऐसा करूँगा कि आपका चरित्र ही नष्ट हो जाए। हाँ, इतना भयंकर, एक और भी एक साधु के लिए ना, आम आदमी के लिए अलग बात है, लेकिन साधु के लिए किसी स्त्री को भेजकर उसके चरित्र को भ्रष्ट करना इसलिए बहुत भयंकर अपराध है। मतलब वो ना हम अंदाज नहीं रखते, एक साधु के लिए, एक ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए, एक औरत के चक्र में डालकर बदनाम करवाना, ये बहुत ही भयंकर चीज़ है, लेकिन वो भयंकर चीज़ तक वो पहुंच गया। मतलब वो बोला कि भी क्या करें इसको, मैं मेरे से ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है ये। तो वो बेनापोल के सबसे पावरफुल वेश्या को बुलाया, वो सबसे अधिक सुंदर थी, उसको बुलाया, बोला कि आपको 3 दिन में उसको बदनाम करना है। और तीसरे दिन जब बदनाम होगा तो हमारे विटनेस भी होंगे, और हम लोग जनता में आके वो ऐलान करेंगे उसका। तब हरिदास ठाकुर ना बीच जंगल में दो रोज 3 लाख जप करते थे, 22 घंटा दिन रात अकेले में करते थे जब। तो वहाँ पहुँच गई पूरा श्रृंगार करके, एकदम सुंदर चांदनी रात थी, बहुत सुंदर समा था, अकेला जंगल का सिचुएशन था। ये एकदम पूरी तरह से ऐसा उत्तान वस्त्र धारण करके पहुँचती है वहाँ पर। बोलते ठाकुर तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने जवान हो, मैं तुमसे संग करना चाहती हूँ, मेरा दिल जल रहा है आपके लिए। तो कहता है ज़रूर पूरा करूँगा आपका, आपकी जो इच्छा है मैं पूरी करूँगा, लेकिन मेरा व्रत है उसको मैं पूरा करके आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो वो बैठी रहती है अपना, ऐसे होता है ना, वो ऐसे औरतें शांत नहीं बैठते, कुछ ना कुछ ऐसे अंगड़ाई और लेते रहते और वो जब करते रहते। बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, कोई भी ऐसी औरत सामने अकेली होगी और रात का समय होगा और आप जब कर रहे होंगे तो जब करते रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए फिर भी जब करते रहे। फिर वो सारे गलत काम जो होते हैं ना वो रात के समय होते हैं, रात का समय तमोगुण का होता है, और वो गलत कार्य करने के लिए वो गुण भी आवश्यक होता है। किसी का खून करना है, चोरी करनी है, डकैती करनी है, दिन में उसके लिए प्रेरणा नहीं मिलती, रात को प्रेरणा मिलती है गलत काम करने के लिए। तो जैसे दिन आता है ना तो तुरंत तो उसका भाव चेंज हो जाता है, अरे दिन आ गया, पंछी अब बात करने लगे, अरे लाइट भी आ गया, तुरंत चले जाती है वो, वापस शाम को सजेस्ट किया थी। फिर बोलते ठाकुर कल तो आपने मुझे इंतज़ार करवाया, मैं तो रात भर वेट करती रही, आपने तो मेरे संतुष्ट किया ही नहीं। बोले क्या करूँ, मुझे मेरा व्रत है ना, जब मेरा व्रत समाप्त हो तो तुम सो गई थी, फिर मेरा तुरंत व्रत शुरू हो गया दूसरे दिन का, तो अभी मेरा 3 दिन कुछ समय बाकी है, मेरे पूरा जो मैंने प्रण किया है वो पूरा होते ही मैं आपको आपकी इच्छा पूरी करूँगा। फिर वही बात कि आप इतने सुंदर हो और बीच रात में हम अकेले हैं, इतना सुंदर समा है, चलो कि बैठो आप आराम से। फिर जब करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर बीच रात में उसको नींद आ जाती है, फिर सुबह वो देखते इधर वापस सूरज आ गया, मतलब लाइट हो गया, चली जाती है। फिर थर्ड डे वापस सजेस्ट किया, जी महाराज आप मुझे कितना तरपा हो गए, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ आपका। बोले अभी मेरा आज हो ही जाएगा पूरा, आज मेरा व्रत पूरा होने वाला है, आज आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो वो थर्ड डे में क्या होता है ना कि वो आग बंद करके बैठ जाती है, तो उसके मन में वो हरिनाम गूंजने लगता है। उसका कारण ये है कि जब कोई व्यक्ति बहुत करुणा से जप करता है किसी के ऊपर, या कोई व्यक्ति बहुत ही आर्त भावना से भगवान के लिए प्रार्थना करता है, एकदम मतलब उसके मन में कोई किंतु परंतु नहीं है, एकाग्रता है पूरी तरह से, वो किसी के लिए या खुद के लिए, जैसे भगवान के लिए बहुत हृदय से प्रार्थना कर रहा है, एकदम इंटेंस तीव्र, तो जितना आपकी जप में शक्ति है ना, वो शक्ति पहले शरीर का स्तर पार करके, फिर मन का स्तर पार करके, फिर बुद्धि का स्तर पार करके, फिर अहम को पार करके, फिर आत्मा को छू लेता है। जितना आपने इंजेक्शन लगाया ना उतना अंदर जाता है वो। तो इनका जब तो इतना शुद्ध था कि साक्षात कृष्ण के साथ संग कर रहे थे, बुद्धि अहम सारे स्तरों को पार करते हुए ये आत्मा तक पहुंच जाता है। जो व्यक्ति जप कर रहा है वो तुरंत आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाता है। जैसे प्रभुपाद ने कहा था ना कि एज सून एज वन चैंट्स हरे कृष्णा, द बॉडी लेवल, माइंड लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, ऑल स्टेटा आर इमीडिएटली क्रॉस्ड एंड दिस One is situated on the spiritual platform and immediate happiness is experienced. उस तरह से उसके लिए वो अनुभव है, लेकिन सुनने वाले को कितना वो बद्ध है दुनिया से। मेरा भी ये कई बार अनुभव है, जब मैं कभी कभी ना कीर्तन करता हूँ तो कीर्तन में कभी कभी मैं किसी किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर बार नहीं लेकिन एक मंत्र इसके लिए एक मंत्र ऐसे मैं कीर्तन में भी करते रहता हूँ जिस मुझे प्रेरणा होती है। और मैंने देखा है कि वो व्यक्ति आकर मुझे बताते हैं, प्रभु जी इतना अच्छा लगा मुझे आज, बिना कुछ कहे मैंने बताया नहीं कि आपके लिए मैंने आज कीर्तन किया। लेकिन जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कहीं पर बैठ के हुए, उसको वहाँ पर कुछ होता है, कुछ फीलिंग होता है उसको। तो तीसरे दिन वो उसको इतना मतलब उसके बुद्धि मन सब पर इतना परिणाम हुआ कि उसके मुंह से भी वो गूंजने लगा। जैसे हम लोग गणपति में सुनते हैं ना, कोई नया गाना आया मार्केट में तो वो 50 बार बजता है तो अनजाने में ब्रश करते करते उसी को हम लोग गुनगुनाते हैं। अरे नहीं चाहते वो भी गुनगुनाते, क्योंकि वो दिलो जान पर छा जाता है पूरा सब जगह पर, वो बार बार ठोकने पर ना वो उसकी गुंजन होता है। तो वैसे ही स्पिरिचुअली इसके बारे में हो, तो वो उसके बाद में हरे कृष्णा करने लगे, उसको पता नहीं वो क्या बोल रही है, वैसे ही ऑटोमेटिक होने लगा उसका। और जैसे ही ये हुआ तो वो भी रात बीत गई, जब सुबह हो गए तो होश में आई तो वो रात भर गुंजन कर रही थी उसका अपने आप सोते एकदम। तो उस समय उसका एकदम हृदय परिवर्तन हो गया, फिर महाराज मैं बहुत पापी हूँ, मैंने किसी के कहने पर मैं यहाँ पर आई थी आपका शील हरण करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, आपका चरित्र हनन करने के लिए मैं आई थी। तो ठाकुर हरिदास कहते हैं कि जब तुम आई थी ना तब भी मैं इसको जानता था, एट दैट टाइम ओनली आई न्यू आप क्यों आई हो, और तब भी मुझे यहाँ से निकल जाना मुमकिन था, तब भी मैं चाहता था तुरंत यहाँ से निकल जाता एक ही क्षण के अंदर, लेकिन मुझे तुम पर बहुत दया आई इसलिए मैं बैठा रहा। मुझे लगा कि तुम कितनी दुर्भाग्य हो, क्या करना चाहिए आपको और क्या कर रही हो, ऊपर से व्यवसाय तो तुम्हारा वैश्या का है लेकिन आज जो करने आई वो उससे भयंकर है ना, जब धंधा करने बैठे तो घर पे जो ग्राहक आ रहे हैं उसको पैसा देके कर रही धंधा अपना, लेकिन आज जो करने जा रही है धंधे के अंदर वो इतना घिलौना काम है, तो अज्ञान के वश तुम जो कर रही हो उसको देखकर मुझे बहुत दया आई तुम्हारे ऊपर, इसलिए मैं बैठा रहा हूँ। अभी तुम समझ गई हो तुम्हारा गलत काम क्या है, तो बोलते अभी मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसी के कहने पर आई थी आपके लिए। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा जो भी धन तुमने कमाया है बहुत सारा, वो बहुत धनी थी मतलब टॉप वेश्या थी वो उस समय की, तो बहुत धनी थी वो, तो सब धन जो है ब्राह्मणों में बांट दो और यहाँ पर आके बसो। वहाँ पर हरिदास जी ने एक तुलसी जी को स्थापित किया था जिसके सामने बैठ कर वो जप करते थे, इसी तुलसी के सामने आकर जप करो, और वहीं उसको दीक्षा दे दिया और तुरंत चले गए वहाँ से। तो वेश्या ने क्या किया, घर गई सारा दौलत सबको बांट दिया उसने, सफ़ेद वस्त्र पहनकर वहाँ पर आई, सारे बाल उन्होंने कटवा लिए और वहाँ बैठ कर जप करने लगी। तो वो हरिदास के ठाकुर के इतने ही फेमस हो गए बाद में, ठाकुर जी आपका उधर निर्वाह करेंगे आपको चिंता मत करना, होता है ना ऐसे कि अभी कोई खाऊंगे क्या सब बांट के तो आ गई, बॉल्ड किया उसने, शेव्ड अप एंड उधर बैठी तो उसको उसके पास फल वल धान्य सब आने लगा, उधर सब गांव के लोग आकर दंडवत करने लगे उसको, बड़ी फेमस संत बन गई वो। तो हम जैसे आदमी सोचेगा ना कि कोई वेश्या आकर मैं भी उसका उद्धार करूँगा, तो नहीं कर सकते हम लोग उसका उद्धार, वही हमारा उद्धार कर देगी। हरिदास ठाकुर थे इसलिए वो कर सके, हम लोग ऐसा उसको अनुकरण नहीं कर सकते कि भगवान के नाम पे बल पर हम उसका उद्धार करेंगे। हमारा नाम अभी तक इतना सिद्ध नहीं हुआ है जितना हरिदास ठाकुर का था, वो अभी हम जब करते समय भी हमारे मन में विचार आते हैं, जब करते समय कुछ दिखता है तो हमारा मन वहाँ पर भटकते रहता है, ऐसा है। तो ये अनुकरणीय चीज़ नहीं है, ये श्रवणीय चीज़ है, इसको हम श्रवण कर सकते हैं, अनुकरणीय चीज़ नहीं है। लेकिन उनकी श्रद्धा जो थी भगवान के नाम पे वो बहुत विशाल श्रद्धा थी, और वो साक्षात भगवत नाम के आधार पर साक्षात भगवान से संग कर रहे थे। उसके बाद में जगन्नाथपुरी में जब गए तो महाप्रभु चैतन्य उन्होंने कहा, इतने नम्र थे वह हरिदास ठाकुर कि वो नामाचार्य के रूप में ऑलरेडी प्रसिद्ध हो गए थे। नामाचार्य कोई बहुत सीधी बात नहीं है। और उनका स्थिति ऐसा था जैसे थे ना कबीर, कबीर का वैसा ही था। कबीर जो थे वो एक जो लड़की थी जो विधवा हो गई थी, विधवा जवान अवस्था में, तो जो लड़की का पति मर चुका है उसके गर्भ में भगवान की दया से कबीर का जन्म हुआ बिना पुरुष का संग किए। उसको दृष्टांत हुआ, उसको प्रह्लाद का अवतार मानते हैं। तो जैसे जन्म लिया तब से वो राम का नाम जपने लगा, और औरत मुसलमान थी तो दोनों तरफ से मार खाया उसने, हिंदू की तरफ से भी कि यवन है, यवन कुल का जन्मा हुआ है, तो मुसलमान की तरफ से कि मुसलमान कुल में जन्मा हुआ है, हिंदू को भगवान का नाम लेता है। जीवन भर संघर्ष हुआ उसका, जीवन भर, और कभी राम नाम नहीं छोड़ा उसने जीवन भर। बहुत हिंदू मुसलमान को एकत्र करने का प्रयास किया, बहुत एकत्र हुए भी लेकिन बहुत दुश्मन भी बने उसकी वजह से, हिंदू वाले भी और मुसलमान वाले भी। उस तरह से हरिदास ठाकुर का भी जीवन है, मुसलमान कुल में जन्म होकर वो हरिनाम जप कर रहे थे, तो मुसलमान से भी निंदा और हिंदू से भी निंदा। मुसलमान लोग बोल रहे हैं तुम काफिर हो, हिंदू लोग बोल रहे हैं तुम मुसलमान हो के हमारे भगवान का नाम क्यों लेते हो, अपना अपना नाम लो। तो इधर से भी पतित उधर से भी पतित, ऐसी ही स्थिति ब्रह्मा जी ने मांगी थी कि मेरी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, कोई मेरा सम्मान नहीं होना चाहिए, मेरा कुल भी सबसे निचला होना चाहिए, धन से भी मैं गरीब होना चाहिए। हाँ, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीवीर, हर तरफ से मेरा स्थिति जो है वो निंदनीय होना चाहिए। तो भगवान ने वरदान दिया था, कोई बड़ा पोजीशन नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्मा का पोजीशन प्राप्त करके कितना बड़ा गड़बड़ हुआ हुआ ना। मैं अपने पद के अहंकार में था ना कि अरे ये लड़का भगवान कैसे हो सकता है, अगर मेरा पद वैसा नहीं तो इतना अहंकार नहीं होता मुझे, और परीक्षा वरीक्षा नहीं करता मैं, लेकिन मैं ब्रह्मा था इसलिए मुझे वो संदेह भी हुआ और मैंने परीक्षा करने का भी साहस किया। अभी मुझे अगली बार ब्रह्मा वगैरह नहीं बनना है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है। बनाओ भी मत आप, और बनवाओ नहीं बनना है ये बात अलग है, लेकिन ऐसा बनाओ कि कुछ उसमें हो ही नहीं, ना सम्मान हो ना मान हो ना कुल हो ना जाति हो, कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वो यवन कुल में जन्म लिया, वो तकलीफ उठाया दोनों तरफ से। तो वो इतने नम्र थे लेकिन नामाचार्य के ऊपर ख्याति हो ही गई थी फिर भी उनकी। तो जब जगन्नाथपुरी सब लोग शिफ्ट हो गए ना, भगवान जब जगन्नाथपुरी गए तो सारे भगवान के साथ में गए सब वैष्णव लोग, लेकिन ये भगवान के साथ में नहीं गए, ये सोच करके मैं कितना पतित हूँ, मैं इनके साथ में बैठने लायक नहीं हूँ, मैं तो मुसलमान कुल का हूँ, मेरा बहुत निचली जाति है, मेरा सब कुछ न्यून है। तो वो सब लोग गए और प्रताप रुद्र ने सबको एकोमोडेशन दिया और उसके बाद लेट पहुँचे ही, और महाप्रभु जी को आगे बताया कि मैं तो जंगल में रहूँगा, मैं किसी के संग नहीं रहूँगा, मेरे संग से भी लोगों को पाप लगेगा। तो बीच जंगल में उन्होंने रहने का तय किया, वहाँ पर महाप्रभु ने उसके लिए सिद्ध बकुल मतलब बकुल का झाड़ लगाया, वो दातुन होता ना, वो रोज दातुन लेके आते थे जगन्नाथ जी का, मैंने भी लिया है महाप्रसाद उसका, उसमें कपूर रहता है और दंडी रहती है, तो वो जाके उन्होंने बोया उधर, उधर कुछ ही क्षणों में एक बहुत बड़ा पेड़ तैयार हो गया, उसके नीचे बैठकर वो भजन करते थे। और कभी वो जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं गए, ना कभी भक्तों के बीच में गए, लेकिन जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके हर रोज़ सुबह हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए गौरांगा महाप्रभु पहुँचते थे, तीन तीन घंटा बात करते थे उनसे उस सिद्ध बकुल पेड़ के नीचे बैठकर। वो सिद्ध बकुल उसके बाद में नाम पड़ा है उसका, हरिदास ठाकुर के नित्य जप करने की वजह से वो वृक्ष सिद्ध हो गया, वृक्ष का भी उद्धार हो गया। वहाँ पर महाप्रभु चैतन्य रोज तीन घंटा उसके वार्तालाप करते थे। और कौन सी लीला सुननी है आपको, श्रीमद् भागवत के बारे में, भगवान की लीला के बारे में बात करते रोज, और जगन्नाथ का महाप्रसाद लाकर देते थे उसे, जगन्नाथ का महाप्रसाद रोज लाके देते थे दर्शन करने के बाद में, और उनसे बातें एकांत में बातें करते थे। अभी महाप्रभु जैसे भगवान जो है ना, जैसे अभी कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मिस्टर मोहम्मदलाल हो या कोई और टाटा बिरला अंबानी हो, उनके उनका समय ही उनका पैसा है, क्योंकि एक मिनट के अंदर वो इतना पैसा कमा सकते हैं। इसलिए वो अगर आपको 15 मिनट का अपॉइंटमेंट देंगे तो आप उतने बिजनेस वाले होंगे तो आपको 15 मिनट देंगे, वो छोटे होंगे तो 10 मिनट ही देंगे, और कोई 500 करोड़ वाला बिजनेस करने को आए तो उसको आधा घंटा देंगे। उनका समय इतना कीमती होता है, इतना कीमती समय होता है उनका। तो ये तो भगवान है स्वयं, कोई अंबानी नहीं है। भगवान अपने अवतार का कीमती समय जो है उसमें से 3 घंटे इसको दे देते, और 3 घंटे दोपहर को गदाधर पंडित को देते थे। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान अगर अपना कीमती समय इतना एकांत में किसको दे सकते हैं तो व्यक्ति कितना महान होना चाहिए, है ना। बिजनेसमैन ऐसे सोचता है हमेशा, बिजनेसमैन के ऑफिस में कभी 5 मिनट का भी अपॉइंटमेंट होता है, परफेक्ट 5 मिनट्स, नॉट 1 मिनट मोर। 7 मिनट का भी अपॉइंटमेंट होता है, कोई खड़े खड़े 1 मिनट का भी अपॉइंटमेंट होता है, बिकॉज उनका हर एक मिनट के ऊपर उनके करोड़ों के हिसाब किताब होते हैं। तो भगवान का समय का केवल कितना होगा, वो भी खाली 48 आवर्स ईयर्स दुनिया में देने वाले हैं, उसमें 24 घंटे 24 साल तो गए उनके, 6 साल भ्रमण में गए, अभी 18 साल बचे हैं, उसमें हर रोज़ 3 घंटा उनको दे रहे हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि हरिदास ठाकुर कितने बड़े व्यक्ति थे, और जगन्नाथपुरी में कितने भक्त थे उनके, ऐसे नहीं कि वो ऐसे 2-4 भक्त थे, अनंत भक्त थे। सब लोग शिफ्ट हो गए थे जगन्नाथपुरी में बंगाल से, और स्वरूप दामोदर है, हाँ कितने लोग हैं, लेकिन देखो 3 घंटा उसको दे रहे हैं। वहाँ पर माया देवी आई वेश्या बनकर, माया देवी उनकी शिष्या बन गई। माया देवी मतलब अपना सारा जो ऐश्वर्य है माया का चार्म, जो दुनिया को भ्रमित करने की शक्ति जो है, सारी शक्तियों के साथ माया देवी आई थी वहाँ पर, लेकिन वो भी परास्त हो गई। आज तक मानव जाति के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। तो संत तुकाराम के लिए माया देवी खुद नहीं आई थी, वेश्या आई थी, वो तो माता माता करके उसको उन्होंने पूरा पिघला दिया उसको पूरा। लेकिन ये एक बार वेश्या आई इनके लिए, एक बार स्वयं माया देवी आई, स्वयं माया देवी, दो बार हुआ उनके लिए। गिरिराज महाराज के जीवन में भी ब्रह्मचारी लाइफ में जुहू में ऐसा प्रसंग हुआ था, रात में एक लड़की आई थी उनके पास जुहू मंदिर में, जब झोपड़ी थी ना तभी तभी ये महाराज जी टपरी में रहते थे और टेंपल काम करने का आरंभ करने का कोशिश कर रहे थे। उनका यौवन देख के वो लड़की बहुत पागल हो गई थी, बीच रात में आई थी जब एक काम करते बैठे हुए थे। बहुत साधारण विभूति नहीं है लोग बहुत। एनीवेज तो फिर उनका बहुत हो गया, काजी बहुत तृप्त हो गया, त्रस्त हो गया, और काजी का भी ऐसा ही था, सहन नहीं हो रहा था उसको कि मेरे इसके अंदर एक आदमी भगवान का नाम जप करता है, मुसलमान होकर भी सुनता नहीं है, और हिंदू को भगवान का नाम लेता है, लोग पागल हो रहे हैं, तो सहन नहीं हो रहा उसको, लोग वॉर्न करते हैं उसको पहले, वो नहीं फिर भी नहीं सुनते, फिर उसको अरेस्ट कर लेते, अरेस्ट करके नवाब के दरबार में लेके आते। नवाब भी बहुत परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान नहीं, काजी बहुत परेशान था। तो नवाब पूछता है कि तो इतना क्यों करते हो भगवान का नाम, क्या मुसलमान होकर तुमको शर्म नहीं आती क्या, अभी काजी की तरफ से तुमको दंड ही मिलने वाला है, मृत्यु दंड मिलेगा आपको, लेकिन मैं तुमको मृत्यु दंड से बचा सकता हूँ, तुम्हें खाली हरिनाम करना छोड़ दो बस, और मुसलमान की तरह रहो आराम से, और ये सब छोड़ दो, मैं आपको बचा सकता हूँ, मेरे हाथ में उतना अधिकार है। तो ठाकुर हरिदास जी बोलते हैं कि आप जरूर मेरे खात्मा कर सकते हो, आप ऐसा करो कि मेरे शरीर का 1000 टुकड़ा करो, और हर एक टुकड़े का और 1000 टुकड़ा करो, आपको हर टुकड़े से हरिनाम की गूंज सुनाई पड़ेगी, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो रहूंगा भी नहीं, लेकिन मेरे टुकड़े हुए हर टुकड़े से, शरीर के टुकड़े से आपको भगवान का नाम सुनाई पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चाहते हुए भी उसको हरिनाम को रोक नहीं सकता, मेरी जिह्वा को मैं रोक नहीं सकता, हरिधाम मेरे कण कण का अविभाज्य अंग बन गया है, मेरे अस्तित्व का, मेरे हर एक पेशी के अंदर हरिधाम गूंज रहा है। मैं नहीं रह सकता, आप जो चाहे कर ला कर लो, आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर लो, लेकिन तो आपको डर नहीं लगता क्या? मुझे डर लगने का सवाल ही नहीं। जो भी करते हैं श्री कृष्ण करते हैं, जिंदगी का दान भी देते हैं, जिंदगी छीन भी वही लेते हैं, वो श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं और मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो बोलता है नवाब की ये तो आदमी सुधरेगा नहीं, इसको तो मुझे दंड देना जरूरी है। तो बोलते हैं काजी फिर बोलता है कि महाराज ये तो सुनने वाला आदमी नहीं है, इसको दंड ही देना चाहिए। तो उसको जल्लादों को बुलाते हैं, उसको मार्केट में भेजते हैं। नवाब कहता है इतना तुमको श्रद्धा है हरिनाम के ऊपर, इतना श्रद्धा है, अभी देखते हैं तुम्हारा हरिनाम को कैसे बचाता है। अगर तुम ये कोड़े खाने से बच गए ना तो मैं मान लूँगा तुम्हारे हरिनाम में कुछ दम है और तुम भी कुछ बड़ी हस्ती हो, फरिश्ते हो। तो बोले क्या मार्केट में, तो उनको पता था कि इतना पतला दुबला साधु जो है ना दो कोड़े खाने के बाद ही ख़त्म हो जाएगा, इतना भयंकर कोड़े थे वो, दो जगह मार खाने पर ही लोग मर जाते थे। ये दो जगह पर मार जाने का सवाल ही उठता नहीं है, एक के बाद चल रहा है 22 मार्केट प्लेस हो गए। तो चैतन्यचरितामृत में जो लिखा हुआ है वैसा है कि जैसे ही महाप्रभु चैतन्य को मालूम पड़ा कि ऐसा हो रहा है तो महाप्रभु चैतन्य वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्हें चक्र को आह्वान किया। भगवान तो भक्त रूप में आए थे ना, वो चक्र बोलने का कुछ काम नहीं था, लेकिन वो इतने क्रोधित हो गए देखकर ये सब कुछ कि उन्होंने चक्र को आह्वान किया। तो उस समय चक्र भगवान की उंगली से आगे ही नहीं गया, भगवान ने आदेश दिया जाओ इन लोगों को काट के आओ, तो वो आगे ही नहीं गया, वो उंगली पर ही घूमता रहा और भगवान की उंगली भी जल गई थोड़ी सी, क्योंकि हरिदास ठाकुर मार खाते हुए मारने वालों के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान इनको माफ करो, इनको पता नहीं क्या हो रहा है, इनको क्षमा कर दो आप। तो करुणा का जो फोर्स था उनका, वो भगवान के आदेश से भी बढ़कर था, जो भगवान ने चक्र को दिया था उससे भी बढ़कर इनका करुणा का फोर्स था। तो ये चक्र उनसे निकल ही नहीं गया, तो भगवान ने चक्र को वापस भेज दिया और देखते रह गए। अभी भगवान असहाय हो गए, कभी करूँ क्या मैं, मेरे भक्तों को बचाऊँ कैसे? तो भगवान ने अपनी कांति जो है ना, कांति वो उस पर ढक दी, जैसे आपके ऊपर गद्दा डाल दिया उन्होंने और गद्दे पर सब मार पड़ रहा है, अपनी कांति से हरिदास ठाकुर को ढक दिया उन्होंने। और हरिदास ठाकुर गोविंद का नाम पुकारते रहे और उनके लिए प्रार्थना करते रहे, मार खाते रहे, कुछ नहीं हुआ उनको। तो उनको फ्रस्ट्रेशन हो गया एकदम, अरे क्या किया जाए अभी इसको, ये तो हंस रहा है, तो पुकार रहा है भगवान को, बोला चुप बैठ, बंद कर हरे कृष्णा, स्टॉप चैंटिंग, फिर भी वो बोलते जा रहे हैं और ऐसे नज़रों से उनको देख रहा है इतनी करुणा से कि वो दोनों ही एकदम उनके चेहरे को देख नहीं पाते, वो उनकी आंखों में देख नहीं पाते, इतनी करुणा थी उसकी आँख में कि समझो अभी समझो कोई मैं पापी हूँ समझो और आप बहुत पवित्र हो और जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरे आपकी आंखों में देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि आपकी आंखों में अगर पवित्रता का तेज है और मैं पापी हूँ तो मैं आपको नीचे झुकूंगा तुरंत, मैं आपको नज़र नहीं दे सकता। तब ऐसे उसको वो नज़र दे सकते नहीं है, वो इतनी करुणा से उनको देखता है, जब भी वो सब खींच के देखे साथ में उसके, बंद करो इसको, तब आँख में देखते हैं तो तुरंत बाहर देखते हैं। और फिर वो बोलते हैं अरे वो थक जाते एकदम पूरे, उनके हर एक कण कण दुखने लगता है मार मार के। तो बोलते हैं अभी तो मारने का भी शक्ति नहीं हमारे अंदर और तुम तो मरते नहीं हो, अभी हमारा मृत्यु निश्चित है। बोले क्यों? बोलते अगर तुम्हें हमने नहीं मार दिया तो काजी नवाब हमको मार डालेगा, क्योंकि हमने अपना काम नहीं किया जल्लादों ने। तो अच्छा तुम्हें पहले क्यों नहीं बोला? मैं पहले कभी का मर जाता, देखो अब मैं कैसे मरता हूँ, तुमको मृत्यु को प्राप्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो मैं भी कैसे मरता हूँ आपके सामने। बैठ गए, उसी समय ध्यान करके जैसे कि ख़त्म हो गए, वो एक यौगिक प्रक्रिया होती है, इट्स कॉल्ड ए सस्पेंशन ऑफ लाइफ। तो जैसे ही गिर गए तो खुश हो गए, बहुत मर गए, हाँ बैठ के बैठ गिर गया सुनो ना, वो बैठ के जब ही बैठ के ध्यानस्थ हो गए और उन्होंने प्राण अपने सस्पेंड कर दिए तो शरीर गिर गया, तो उसको उठाया नदी में फेंक दिया, नदी में पहले उठा के नदी में फेंक नहीं दिया, पहले पहले उठाया और नवाब के पास लेके आए सीधा आड़ा करके। तो नदी के जब नवाब के पास पहुंच गए तभी उन्होंने कहा देखो लेके आया उसको इधर, अरे जाओ उसको दफना दो। तो कासिम बोलता नहीं महाराज ये काफिर है, इसको दफनाएंगे तो जन्नत प्राप्त होगी, इसको नरक प्राप्त होना चाहिए, जहन्नुम प्राप्त होना चाहिए, तो इसको ना हिंदू का राइट मिलेगा ना मुसलमान का राइट मिलेगा, तो नदी में फेंक दो मछलियों को खाने के लिए। अगर जलाया जाएगा तो हिंदू की तरफ से उसको लाभ मिलेगा, दफनाएंगे तो मुसलमान की तरफ से लाभ मिलेगा, उसको कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, वो तुच्छ जीव है, उसको नदी में फेंक दो सब मछलियों को खाने के लिए। तब वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे तो कहते भगवान उसके शरीर में प्रविष्ट कर चुके थे तो उठा नहीं पाए उसको, फिर उठा पाए, फिर नदी में फेंक दिया। फिर वो कुछ दिन नदी में रहे ट्रांस में, फिर उठ के चले आए। अभी मैं इसके आगे की कहानी कथा में बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दूसरी कथा बताऊँ। ये महाप्रकाश का समय आया ना, महाप्रकाश का, तो महाप्रकाश के अंदर तो इधर ही थे वो, सेवा सांगन में थे, और भगवान एक एक करके बुला रहे थे। तो हरिदास का नंबर आया, बोलते हरिदास याद है तुम उस दिन मार्केट प्लेस में इतने कोड़े खा रहे थे, पता है कि मैं वहाँ पर प्रकट हुआ था चक्र लेकर, लेकिन तुम मेरा चक्र निकल नहीं पाया, तुमको पता नहीं होगा लेकिन मैंने मेरी कांति को अपने आपके ऊपर ढक दिया था, देखो देखो हरिदास देखो, ऐसे करके भगवान है ना टर्न हो गए और अपनी पीठ खोल के भगवान ने दिखाया सारे कोड़े भगवान के पीठ पर। हरिदास बहुत जोर से चिल्लाया भगवान आपने ऐसे क्यों किया, मुझ जैसे पतित जीव के लिए आपने कोड़े क्यों खाए, मैं अगर मर जाता तो दुनिया में क्या फर्क पड़ता, ऐसे बहुत कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो बहुत बात हुई, बहुत बात, ये तो भगवान सबको याद दिलाते ना, गंगादास पंडित को उसका स्टोरी याद दिलाते हैं, श्रीधर को उसकी कथा याद दिलाते हैं, सबको अपना अपना याद दिलाते, पुराना सब कुछ याद है। उस समय जब तुम पत्नी को लेकर गंगा जी के पास भाग रहे थे मुसलमानों के भय से, और तुमको बोट चाहिए था और तूफान आ रहा था, यहाँ से मुसलमान लोग आ रहे थे, तो बोटमैन कौन था, मैं तो था, मैं तो बोटमैन बन के आया था, तुमको बचा के लेके गया मैं, ऐसे गंगादास पंडित को बताया, हरिदास को बताया कि देखो हरिदास देखो, तो हरिदास ना बेहोश हो गया देख के, उसको देख ही नहीं पाया उसको, मतलब उसे इमेजिन नहीं कर पाया कि मेरे लिए इतने तुच्छ जीव के लिए, इतने पतित जीव के लिए भगवान स्वयं अपने पीठ पर वार सहन कर लेते हैं, पूरा लाल ऐसे पूरा हजारों वार उसके ऊपर कोड़े के वार। तो बहुत महान व्यक्ति थे हरिदास। तो हरिनाम के ऊपर जो श्रद्धा थी उनकी ना बहुत जबरदस्त था, सबसे ज्यादा इतना निर्भय हो गए थे वो, उनके ऊपर तो कितने जानलेवा संकट आए एक्चुअली, लेकिन कभी डरे नहीं, वो डर नाम का चीज हुआ नहीं उनको, इतना इतनी हिम्मत के साथ कौन बोल सकता है नवाब के सामने जो आपको मारने के लिए तुला हुआ है, मतलब आप ही मर जाओगे तो कुछ समय के बाद में कौन क्या बोल पाएगा। तो उनको बोलते आप मारने के बात कर रहे हो, मेरे टुकड़े करो आप, हर टुकड़ा भी गूंजे गूंज कर पुकार के पुकार कर गूंजेगा, क्या बोलेगा उसको आदमी कोई, हाँ 10 लक्ष कुछ टुकड़े करने के बाद भी बोलेगा हर टुकड़ा भगवान का नाम पुकारेगा, मैं क्यों नहीं पुकारूँ, मैं तो पुकारूंगा ही, टुकड़े भी पुकारेंगे, इतनी हिम्मत किसमें हो सकती है मूर्ति के सामने खड़े होकर, जिसने हरिनाम के ऊपर अपने आप को शरण में ले लिया है वही उसको ऐसा बोल सकता है, क्योंकि हरिनाम की शरण ग्रहण कर लेती ही गेते ही भय नष्ट हो जाता है, भय एकदम नष्ट हो जाता है, सबसे बड़ा भय मृत्यु का होता है और वो भी नष्ट हो जाता है। हरिदास ठाकुर की, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है आपका? नाम के ऊपर श्रद्धा जो उनकी थी ना वो अतुलनीय श्रद्धा थी उनकी नाम के ऊपर, नाम तो सब कुछ हम लोग सब करते हैं, वही नाम करते हैं जो वो भी करते थे, हर एक की श्रद्धा नाम पे अलग होती है, किसी को श्रद्धा होती ही नहीं खाली करता है लेकिन दीक्षा ले लिया इसलिए, और किसी किसी को बहुत गहरी श्रद्धा होती है। नाम ही सब कुछ है, इसकी अनुभूति बहुत बहुत कम लोगों को होती है, और नाम ही सभी बीमारियों के इलाज है, सर्व औषधि नाम ही है, इस पर कई लोगों को विश्वास नहीं है। वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है नाम करेंगे, लेकिन अभी ये इस समय मेरा विश्वास तो मेरे दोस्त के ऊपर है जो मुझे अभी हेल्प करेगा। नाम पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण शरणागति नहीं होती। वही एक साधक को अलग अलग जगह पर पहुंचाता है। जिसकी आपकी जितनी श्रद्धा आपकी है उतनी यात्रा आप कर पाओगे, जितना तेल डाला है आपने उतनी गाड़ी चलेगी आप। तो श्रद्धा का तेल जितना डालेंगे आप, उतना आपकी गाड़ी आगे चलेगी, उतना स्पीड से चलेगी। तो ये सब जो नाम के ऊपर श्रद्धा जो है ना, वो आपको इसी जन्म में प्राप्त करना है, और जन्म में प्राप्त नहीं करना है, थोड़ा अभी, थोड़ा बाद में, थोड़ा ऐसा नहीं करना है। भारत के चैतन्य महाप्रभु, उनके मृत्यु पर वो भी मैंने आज सुबह बताया, आप बाद में सुनो उसको। महाप्रभु चैतन्य घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति हरिदास का स्मरण करेगा वो भी पाप मुक्त होगा, और वो भी कृष्ण भक्ति को, प्रेम को प्राप्त करेगा। जहाँ की हरिदास बोलते थे कि मेरा नाम भी याद करके आपके पुण्य नष्ट हो सकते हैं, इतना मैं पतित हूँ। मेरा नाम याद करेगा कोई तो वो अपने कितने भक्ति में पुण्य किया वो सब नष्ट कर पाएगा, नष्ट हो जाएंगे उसके, ये हरिदास सोच रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं उनका नाम याद करने वाला व्यक्ति भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। इतने पावरफुल व्यक्ति थे। तो कोई भी व्यक्ति उनकी याद करेगा, कोई भी व्यक्ति उनके डिपार्चर का याद करेगा, तिरुभाव का याद करेगा, कोई भी व्यक्ति देखेगा उसको, जैसे हमने ड्रामा देखा उसका, देखेगा, याद करेगा, उनका नाम याद करेगा, वो स्वयं व्यक्ति सब पापों से मुक्त होकर कृष्ण प्रेम को प्राप्त होकर गोलोक को धाम को प्राप्त करेगा। ऐसे भगवान ने उनका डेड बॉडी हाथ में रख के पूरे विश्व को वरदान दिया है। ऐसे थे हरिदास ठाकुर। उनके लिए भिक्षा मांगकर उन्होंने श्राद्ध बनाया, घर घर में जाकर भिक्षा मांगी उन्होंने हरिदास का श्राद्ध करने के लिए, और खुद श्राद्ध बनाया उनका। उन्होंने जब हरिदास का देहांत हो गया तो सब लोगों को भीष्मदेव की याद आई कि भीष्मदेव का देहांत भी ऐसे हुआ था, भगवान के मुख कमल को निहारते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए, हाथ जोड़े हुए। सब लोगों ने हरिदास के मृत्यु के समय भीष्मदेव की मृत्यु की याद की। श्री हरिदास ठाकुर की जय।